हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजा महात्मा को पूरी बात बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने असली राजकुमारी को नकली राजकुमारी से बदल दिया। सब लोग ये बात सुनकर हैरान थे और राजा ने उसके आगे बोलना जारी रखा। हमारी योजना सफल भी हो गई, हमने सबको बेवकूफ बना दिया, यहां तक उसे विक्रांत को भी। लेकिन चंद्रिका, उसे वसुंधरा से इतना लगाव है कि वो खुद ही उसे ढूंढने चली गई, और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा बेटा, जो कि नकारा, नालायक और निकम्मा लगता था, साथ ही उसे अपनी बहन से कुछ खास लगाव भी नहीं था, वो भी उस बहन के मोह में उसे ढूंढने के लिए चंद्रिका के साथ चला गया। और उनके पीछे अब उनकी माँ ने अपनी हालत एकदम खराब कर रखी है, जो कि मुझे अच्छी नहीं जा रही, और अब मुझे और सहन नहीं होता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ गुरुजी। इसलिए अगर मुझे एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी मिल रही है मेरे बच्चों को वापस पाने की, तो मैं उसे भी खोना नहीं चाहता। आप अपने शिष्यों को एक बार भेजिए और शक्ति बंधन या जो भी, जैसे भी वो लोग राजकुमार और राजकुमारी का पता लगा सकते हैं, वो सब कुछ करने की अनुमति दीजिए। मैं बस इतनी ही विनती कर सकता हूँ आपसे। इतना बोलते हुए राजा ने महात्मा के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तो थोड़ा सोते हुए महात्मा ने राजा की तरफ देखा और फिर सक्षम की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है, बताओ हमें आखिर क्या सोचा है तुमने और कैसे पहुंचोगे तुम लोग वीरेश तक, क्योंकि जंगल में किस तरह के खतरे हैं और वहां से लेकर पहाड़ी तक जो सारी शैतानी दुनिया है और वहां इसी तरह के सारे बुरी शक्तियों से जुड़े हुए लोगों के अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, तो क्या उन सबसे सामना करने के लिए तुम लोग पूरी तरह से तैयार हो? महात्मा के इस सवाल पर सक्षम थोड़ा सा सच में पड़ गया और उसे अभी तो सच में पता नहीं था कि वहां पर कितने सारे अनजान खतरे उसका इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन आपने ये बात बोल दी है तो वो पीछे भी नहीं हट सकता, इसलिए उसने कहा, हाँ, मैं इन सब के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, कल तक का समय काफी होगा, आप बस आज्ञा दीजिए गुरुजी। ठीक है, जाओ और विजयी होकर लौटो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर सक्षम की तरफ आशीर्वाद देते हुए कहा, फिर आज्ञा कर उसके सिर पर हाथ रखा और फिर बिना कुछ बोल ही वहां से चले गए, बाकी सारे लोगों को वहां छोड़कर। वसुंधरा उसे पूरी जगह पर इधर उधर चलते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि जब से विक्रांत उसे वहां पर लेकर आया है, उसने विक्रांत के अलावा किसी भी और को अपने आसपास नहीं देखा। उसके पहरेदारी करने के लिए भी विक्रांत और किसी को नहीं रखना, शायद वो और किसी पर भरोसा ही नहीं करता है। ये बात अब तक वसुंधरा को समझ आ गई है, लेकिन अगर उसे कुछ नहीं समझ आया है तो वो है विक्रांत के इरादे। वो क्या करना चाहता है उसके साथ, क्यों लेकर आया है उसे यहाँ पर, इस बारे में वसुंधरा को अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। इसके अलावा एक और शैतान ने उस पर हमला किया था जब वो इससे पहले वाली खंडहर जैसी जगह पर एक कमरे में कैद थी, लेकिन वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया था, इस बारे में भी वसुंधरा को कुछ पता नहीं है। और जब भी उसने विक्रांत से पूछा, विक्रांत उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। इन सब बातों के बारे में सोच सोचकर वसुंधरा का दिमाग खराब हो चुका है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो अब और अंधेरे में या कैद में ऐसे बंद जगह पर रही तो पागल हो जाएगी। इसलिए आज जैसे ही वो होश में आए और उसने खुद को बांधा हुआ नहीं पाया, वो किसी भी रूप से बंधी हुई नहीं थी और ना ही किसी छोटी जगह पर कैद थी। वो वहां गुफा में खुली हुई एक पत्थर पर लेटी थी, जहां पर वो उठकर बैठी और फिर उसे एक तरफ से रोशनी आई हुई दिखाई दी, तो वो उसे तरफ ही बढ़ रही है इस उम्मीद में कि वहां से उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। ये बात सोचते हुए वो उसे तरफ आई और वहां पर सच में एकदम सकरा सा रास्ता था जहां से रोशनी अंदर आ रही थी, और उसे वजह से ही वहां पर थोड़ी रोशनी थी जिसके सहारे वसुंधरा यहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन उसे जगह पर पहुंचकर वसुंधरा को समझ नहीं आया कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। वहां पर पत्थर काफी ओवर थे। वसुंधरा ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर खड़ गया और बुरी तरह फिसलकर को नीचे गिरी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके सिर पर हर किसी चोट भी लग गई जिसमें उसे हल्का दर्द हुआ, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा से उसे तरफ बढ़ी, और तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, लाओ हाथ दो मुझे अपना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो आवाज़ सुनते ही वसुंधरा एकदम चौंक गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है, लेकिन वो आवाज़ वहाँ पर एकदम गूंजती हुई सी महसूस हुई। लेकिन वसुंधरा को ऐसा लगा जैसे कि वो आवाज़ बाहर की तरफ से आ रही है जहाँ से वो रोशनी अंदर आ रही है,
इसलिए वसुंधरा ने थोड़ा सा उचककर वहां से झांकने की कोशिश करते हुए देखा और तभी एकदम अचानक से बाहर से एक हाथ अंदर आया। वो हाथ एकदम वसुंधरा के चेहरे के नजदीक था और उसे देखकर वसुंधरा तुरंत ही चिहूंक कर पीछे हट गई और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। आह! वसुंधरा की चीख सुनकर बाहर से आई हुई उस आवाज ने कहा, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, आओ मेरा हाथ पकड़ो। वसुंधरा को नहीं समझ आ रहा था कैसे इस वक्त कौन सा अनजान मददगार वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ गया है और वो कैसे इस तरह एक अजनबी आवाज पर भरोसा कर ले जिसका कि चेहरा भी उसे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर वसुंधरा के पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था और ना ही ज्यादा सोचने का समय, क्योंकि उसे लग रहा था विक्रांत किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता और अगर एक बार बुखार आ गया तो फिर यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी और इसलिए उसने थोड़ा जोखिम उठाने का सोच और एक गहरी सांस लेते उसने उसे खुली हुई जगह से अंदर आते हुए उसके हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही वसुंधरा का हाथ उसे हाथ से छुए, उस पूरी जगह पर वैसी ही एक सफ़ेद रोशनी फैल गई जैसी कि उस जगह से अंदर आ रही थी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी चमक में वसुंधरा के आंखें भी बंद हो गया और वसुंधरा ने अपनी आंखों के आगे अपना दूसरा हाथ लगा लिया और जबकि एक हाथ अब से अभी भी उसने उस हाथ को पकड़ा हुआ है। कहानी जारी है। कहाँ है चंद्रिका, वीरेश और राजकुमार समर? कौन है ये वसुंधरा का अनजान मददगार और ये सच में मददगार है या फिर कोई दुश्मन? और क्या सक्षम कामयाब हो पाएगा वीरेश तक पहुंचने में?